यहाँ हम देखेंगे कि किस खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर पेश किए, उसके ज़मीन आसमान को बनाने की बात है। 2 दिनों में क्या बना, 4 में क्या बना, अगर आप चाहेंगे तो इसकी तफसीर बहुत लंबी मिल सकती है आपको, लेकिन मुझे तो इन चीज़ों के समझने और सुनने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आता, क्योंकि हमें तो ये पता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ये सब कुछ बामकसद बनाया है। कोई भी चीज़ कायनात की ऐसी नहीं है कि जो बेमकसद हो। जो एक चीज़ हमने देखी, एक ऑर्गेनाइजेशन सीखनी है, ग्रेजुअलिटी सीखनी है, जिस चीज़ को जिस तरीके से करते हैं उसके असरात बिल्कुल वैसे देखते हैं। बाज़ दफ़ा हम हालात की बात करते हुए मजबूरियों के नाम पे कोई काम ऐसा करते हैं, लेकिन जब नतायज वो नहीं निकलते तो फिर हम उस बात को कंसिडर नहीं कर पाते। तो कोशिश करनी चाहिए एक मोमिन को, एक मुसलमान को, घर का खाना पकाने से लेकर बड़े बड़े इज्तमाई या इनफरादी मामलात को हर मुमकिन तरीके से, बेहतरीन तरीके से पहले करने की कोशिश की जाए। वो सारे असबाब जो इंसान के अख्तियार में आ सके उसको लेकर फिर उसके बाद अल्लाह पर नतायज को छोड़ दिया जाए। फिर इसके अंदर जो बात एक हुई कि तुम मस्तवा इलस समाई वही ये दुखानुन, फिर इसने तवज्जो फरमाई आसमान की तरफ और उस वक्त वो महज एक धुआं था। दुखान का लफ्ज़ आगे हम पढ़ेंगे, सूरह दुखान भी आएगी, धुएं को कहते हैं। ये क्या है, किस तरह है, इसके बारे में साइंस ने भी आज कुछ कहा। कहते हैं कि कायनात पहले एक किस्म का गुबार का गोला थी और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो है वो इस जमीन और आसमान की सूरत में बदल गई। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे बगैर फुलाया हुआ कोई गुब्बारा हो, कभी भी आपने बच्चों को लेके दिए हों तो जहन में आएगा। उसके ऊपर आप देखें कभी छोटे छोटे स्टार्स बने होते हैं, कभी उसके ऊपर डॉट्स लगे होते हैं, कभी हार्ट्स बने होते हैं। अब छोटा सा वो गुब्बारा है तो आपको वो ऐसे लगता है कि वो बहुत करीब करीब है, लेकिन जो ही आप उसके अंदर हवा डालते जाते हैं, ब्लो करते हैं, तो उसके नतीजे में वो स्टार्स जो है ना वो दूर होते जाते हैं। बस इससे समझ लीजिए एक्सपेंशन। शुरू में पूरी कायनात जो थी, ज़मीन थी, ये गुच्छा थी, एक गोला थी। वक्त के साथ साथ उसके अंदर फैलाव होता गया और एक वक्त आया कि अब एक स्टार कहीं है, दूसरा कहाँ है। बल्कि अगर इसी मिसाल को आप इजराम फलकी की मिसाल पे या उस चीज़ पे गौर से देखें तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। जो हम ये कहते हैं कि हर सितारा दूसरे सितारे से ख़ास फासले पर है और हट नहीं सकता, बिल्कुल आप किसी फूले हुए गुब्बारे को तसव्वुर में लाएं तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी पिंच होने से क्या होगा, वो जितने दूर दूर वो सुराख थे, वो चीज़ें थी, वो फट जाएगा और सब ज़ाया हो जाएंगी, हर चीज़ उलझ जाएगी। तो क़यामत के मौके पर अल्लाह सुब्हान तआला को सिर्फ पिन, तो हम कह रहे हैं ना कुन कहना पड़ेगा, और ये दूर दूर जो हर चीज़ बड़े खूबसूरत तरीके से सजी है ये सब अपनी जगह छोड़ देगी। फिर आप देखिए कि इसमें ये जो बात है कि ज़मीन और आसमान से कहा कि खुशी से आओ या नाखुशी से आओ, ये क्या है। पहली बात तो ये है कि इन दोनों के अंदर सेंस नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को तो सोचने समझने की, तदब्बुर करने की तौफीक दी है, लेकिन बेजान चीज़ों में ये नहीं होता। लेकिन अगर आप साइंस की रोशनी में इस आयत को समझें तो आज ज़मीन की कुछ गर्दिशें ऐसी हैं जो फोर्स कहते हैं प्रेशर के साथ ज़बरदस्ती उससे करवाई जाती हैं, और कुछ गर्दिशें ऐसी हैं ज़मीन आसमान में जो बिल्कुल खुद ही हो रही है। चलिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप कभी दो पहाड़ियों के बीच में लिफ्ट को चलता हुआ देखें, बीच में एक वायर होता है, एक ऐसे कि ऊंची पहाड़ी से नीचे वाली पहाड़ी की तरफ जा रहा है लिफ्ट, तो आप देख रहे होंगे कि वो बिल्कुल ईजीली जाता है क्योंकि हम ग्रेविटी की सिमत में जाते हैं। तो जब कोई चीज़ अपने महवर से इस तरफ जा रही होती है तो वो बिल्कुल सही फील करती है, लेकिन जब नीचे वाली पहाड़ी से आप लिफ्ट को ऊपर लाते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने तौअन व करहन कहकर असल में इंसान को बता दिया कि देखो मानना तो पड़ेगा। खुशी से तकदीर की बात को मान लोगे तो खुशी महसूस करोगे, गम से मानोगे तो रोते धोते रहोगे। इसी तरह शरीयत के अहकाम को खुशी से मानोगे तो मान जाओगे, और अगर तुम इसके ऊपर उलझते रहोगे क्यों, कब, कैसे, मेरे लिए क्यों, उसके लिए क्यों, तो फिर तुम्हारा हाल वही होगा जो बिगड़े हुए माशरों में इस वक्त हो रहा है। ज़मीन आसमान ने क्या कह दिया था, अतैना तौईन, हम खुशी से आ गए। कितना प्यारा जवाब है, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए, मैं अपने रब से कहूँ कि अल्लाह ताला मैं खुशी से आ गई, जिस तरह तूने दुनिया में मुझे जिस वक्त चाहा भेजा मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई। मेरे में से आप में से किसी के पास ये ताकत नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी का वक्त चूज़ करते। बस हम कहते कि हम तो नबी सल्लम के दौर में आना चाहते थे, या हमें तो भाई उस वक़्त आना है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके होंगे ताकि फितने ख़त्म हो चुके हैं। हम नहीं कर सकते ना, हम में से कोई अपना औरत और मर्द होना भी अपनी मर्जी से नहीं कर सका, तो फिर आप बता सकते हैं कि कैसे हो सकता है कि एक इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पर चूं चिरा करे। सिर्फ एक चीज़ बंदे को मुतमईन और मसरूर कर देती है कि ये चीज़ मेरे लिए मेरे रब ने चूज़ की। कभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब किसी को कोई गिफ्ट दिया जाता है, तीन चार लोगों के बीच में कुछ चीज़ें आप रख दें और आप कहते हैं कि जिसका जो दिल चाहे उसको चूज़ कर ले, नहीं फैसला हो पाता। एक इसको कहेगा तुम लो, वो कहेगा तुम लो, या सभी एक चीज़ को देख रहे होंगे, या सभी दूसरी को देख रहे होंगे, या किसी को भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी। उस वक्त फिर क्या होता है, कहते हैं कि आप खुद ही दे दें, आप जिसको जो देंगी वो ठीक है। और आप देखते हैं जो ही देने वाला आपको कहता है अच्छा मेरा ख्याल है ये आपको अच्छा लगेगा, ये आप ले लें, ये आप ले लें, तो उसके पास सब खुश होते हैं। तो क्या कहें हम अल्लाह को, ए अल्लाह जो तूने हमें कहा हम करने को तैयार हैं। तूने औरत बनाया मैं खुश हूँ, तूने बीवी बनाया मैं खुश हूँ, तूने माँ बना दिया मैं इस पे भी खुश हूँ, तूने मुझे औरत की पाबंदियाँ अपने ऊपर लगाने का हुक्म दिया मैं लगाने को तैयार हूँ, दैट्स इट। देखिए सारी जो हमारी जिंदगी की टेंशन है ना, ये फ्रैक्शन में लिखे अपने सामने, टेंशन इज बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन। इंग्लिश में बोलती हूँ तो उर्दू में भी बोल देती हूँ कि जो टेंशन, तो आप समझते हैं ना, ये तो इतना खूबसूरत और इतना मशहूर लफ्ज है कि इसकी उर्दू की जरूरत ही नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है मुझे टेंशन हो रही है। मुझे हैरत हुई कुछ अर्सा पहले जब मैंने एक बच्चे के मुंह से सुना मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, तो मैंने कहा ये कितना फेमस लफ्ज है। तो टेंशन इज बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, ये देखिए रगड़, ये आप सुना, ये मैं आप दो चीजों को रगड़ रही हूँ ना, ये मेरे पास एक समझे पॉइंटर है और ये एक हाईलाइटर है, तो ये फ्रैक्शन जो होती है ना, थोड़ी देर अगर मैं करती रहूंगी ना आप देखेंगे कि इस पे भी निशान पड़ जाएंगे, इस पे भी है, ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसकी किसकी, अल्लाह के फैसलों की और बंदे के मानने की, अल्लाह के दिए हुए हुक्मों की और बंदे के मानने की। जो बंदा अल्लाह के हुक्मों पे यूं चल पड़ता है जैसे फिसलता है ना एक बंदा, बिल्कुल एक ऐसी स्लाइड के ऊपर के जहां बंदा अपने हाथ पांव छोड़ के यूं गिरता है, खुश हो रहे होते हैं लोग स्लाइड से नीचे गिरने में, ये कैफियत जब आएगी तो कालता अतैना तौईन, और आगे इंशाल्लाह आयतें आने वाली हैं कि हम देखेंगे कि फिर उसके बाद जिंदगी तो जिंदगी, मौत तो मौत, कब्र तो कब्र, हशर तो हशर, मैदाने महशर, और उसके बाद जन्नत, इतने प्यारे हो जाते हैं कि ला खौफन अलैहिम वला हुम यहसनून। तो गोया कि हमारे बहुत सारे गम और मुश्किलात हमारी खुद साख्ता होती हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने फिर उसके बाद जो ये बात बता दी कि हमने इनको सात आसमानों में बांध दिया, इससे क्या पता चलता है कि सात हैं तो एक नीचे होगा ना और सातवां सबसे ऊपर होगा ना, क्या झगड़े की बात है। तो देखिए जिंदगी का हुसन अल्लाह के फैसलों को मानने में, मान जाइए इससे पहले कि हम मनवाए जाएं, मान जाइए। ये है गमों को खुशियों में बदलने वाली बात, ये है रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनन। जिस खुशी से अल्लाह की बनाई हुई तकदीरों को मान रहे हैं ना हम, इतनी खुशी से उसकी बनाई हुई शरीयत को मान लीजिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से हर गम दूर होगा। एक और छोटा सा टेंशन फ्री जुमला आपको लिखाना चाहूँगी कि जिस चीज़ को बदल नहीं सकते उसको मान लीजिए। चलिए इसको और थोड़ा सा फाइन करने की कोशिश करती हूँ कि तकदीर से झगड़ने की बजाय तकदीर को मान लीजिए। आप इस तरीके से अपने आप को ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि मैंने एक नया जन्म लिया। अल्लाह के साथ जुड़ने और अल्लाह की तरफ आने और 23 सुपारे पढ़ने के बाद जो बंदे के अंदर तब्दीली आती है वो यही आती है, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। आप देखिए कोई चीज़ नई नई होती है ना तो बड़ी रगड़ खाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कहते नहीं ये ज़रा भी नई है ना तो इसमें बलकस बढ़े, जूता नया पहन के चले तो चुर चुर की आवाज़ें आ रही होती हैं, फिर थोड़े देर बाद उस लेदर की सारी अकड़ ख़त्म हो जाती है तो पाँव को मैच हो जाता है। बस अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए जो हमारी ख़त्म करता है ना वो अकड़ ख़त्म करता है। बड़े बड़े आसमानों की और ज़मीनों की मिसालें देकर बता दिया कि जब वो खुशी से इन कामों को करने के लिए तैयार हैं, सातों आसमान हैं, हर एक अपने ऊपर के ऊपर वाले को कबूल कर रहा है, दूसरा उससे ऊपर वाले को कबूल कर रहा है, तीसरा उसके ऊपर वाले को कबूल कर रहा है, तो कायनात का निज़ाम अगर इस तरह चलता है तो तुम्हारे निज़ाम भी ऐसे ही चलेंगे। हर बंदे को पता हो कि मैं कहाँ हूँ, मेरे ऊपर कौन है, मेरे ऊपर कौन है। और अगर सारे ही एक लाइन पे खड़े कर दिए जाएं, आप सोचिए कि यूं 7 हेवंस की बजाय यूं 7 हेवंस होते, आप इमेजिन कर सकते हैं दुनिया का नक्शा क्या होता। आज जैसे घर वो बनते हैं तो 7 स्टोरीज 7 स्टोरीज बनेंगी, तो हो सकता है कि स्क्वायर मीटर पे भी बन जाए, और आपके नहीं जी नहीं, मैं नहीं अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती दूसरे का रोब, और ये मेरे ऊपर इतना कंक्रीट लाद देंगे, आप जरा 7 को बनाइए तो वो 700 स्क्वायर मीटर होगा। थोड़े रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशन और तदरीज के साथ बढ़ जाते हैं, और जहाँ कोई किसी कंट्रोल, किसी सिस्टम, किसी बात में नहीं आना पसंद करता, जिसको आप कह ले मनमानी का कल्चर, जो मैं हूँ वही सब हूँ, तो फिर उसके नतीजे में होता क्या है कि फिर ज्यादा चीजें भी थोड़ी होने लगती हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये बात करने के बाद कि अल्लाह ताला ने उसको 7 आसमानों में बनाया, फिर हमने आसार आसमान को उसका काम दिया, इससे क्या पता चलता है कि कहीं भी कोई काम हो, घर का काम हो, मैं किसी स्कूल इदारे की बात नहीं करती, घर हो, कोई मदरसा हो, कोई भी बैंक हो, हर बंदे को अपना काम पता होना चाहिए। मसलन हम यहाँ बैठे हुए, आपका क्या काम है, सुबह उठ के सोचा करें जब घर से आते हैं, मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ, ये कोई आदत तो नहीं होगी मुझे सुबह उठे और जल्दी से काम किया और बैग पकड़े और आगे, नहीं आप यहाँ आए सोचिए मैं क्यों आई, मैं क्यों आई मुझे भी पता होना चाहिए। दिल तो यही चाहता है ना, बैठ के बातें करें, हंसे मजाक करें, खाए पिए, चलो आज नहीं पढ़ते आज बातें करते हैं, मुझे इधर आने से पहले अपना काम पता होना चाहिए, और अगर कर सके ना तो दो हल्के से नफिल पढ़ के आया करें, रास्ते में पढ़ लें कि अल्लाह आज यहाँ मैं बैठ के आती हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक दे जब भी मेरे लिए मुमकिन हो। बस दफ़ा ट्रेन या बस में ऐसी कैफियत होती है कि मुझे लगता है कि लोग सोचेंगे शायद मैं दीवानी हो गई हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इशारा तो करना पड़ता है ना, तो हिकमतन मैं नहीं पढ़ती, लेकिन मैं ये दुआ इस्तखारे की मांग के आती हूँ कि अल्लाह एक एक लफ्ज़ जो मेरी जुबान से निकालना वही निकालना जो निकलना चाहिए, तब बात मेरे दिल में डालना जब हो, और जो बात मेरे लिए मुनासिब नहीं तो खुद ही मेरी जुबान से निकाल दें। तो रोल डेफिनेशन, अगर ये तरबीती सेशन हो रहा होता ना तो आपको सिर्फ इन 4-6 आयतों में से मैं पूरा एक सिस्टम निकाल के दिखा सकती थी, लेकिन अभी सिर्फ आप लोग इसको अपने दिल पर लें कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इस कायनात को हमारा उस्ताद बनाया। एक सीरीज मैंने छोटी सी शुरू की हुई है एक ऑनलाइन सेशंस में, हर सेशन में 15 मिनट का या 10 मिनट का होता है फितरत से सबक, यानी उसमें सिर्फ हम सबक सीखते हैं आसमान से, शहद की मक्खी से, केकड़ों से, यानी नेचर के जो बिहेवियर है उससे सबक सीखते हैं। और मैं उसको पढ़ाते हुए कहती हूँ कि आप पहले दिन जब मैंने क्लास शुरू की तो मैंने कहा आपके उस्ताद कौन है, लोगों ने एक दो ही नाम लिखे जिनको हम अपना उस्ताद समझते हैं, मैंने कहा आज से फिर आप अपने उस्तादों की लाइन लंबी करते जाएं, आप देखेंगे कि 1, 2, 3 नहीं आपके 20 ही उस्ताद बनेंगे, और मैं इस पे मेरा ख्याल है दावा कर सकती हूँ कि मेरा तो हर बंदा वो भी उस्ताद है जिसको मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि इंसान हर एक से सीखता है। तो लिहाजा ये बात हो गई। फिर अगली चीज देखिए, ज़य्यन्ना समा दुनिया भी मसाबीहा व हिफ्ज़न, दो लफ्ज़ हैं, एक है ज़य्यन्ना और दूसरा है हिफ्ज़न। इन दो लफ्जों को जोड़ने से क्या पता चलता है कि अल्लाह सुबहाना तआला ने जीनत, यानी आप कह सकते हैं जमाल, और हिफ्ज़न कमाल, जमाल और कमाल को जमा कर दिया। हमारी चीज़ें या सिर्फ खूबसूरत होती हैं और या हमारी चीज़ें सिर्फ कारामद होती हैं। मसलन हमारा वैक्यूम क्लीनर कारामद है सिर्फ, कोई ज़रूरी नहीं वो खूबसूरत हो सकता है वो एक ढोल जैसी गोल सी मशीन हो और उसके आगे मोटा सा थोथनी सी लगी हुई और चला रहा है क्योंकि वो काम किया। इसके बरक्स हमारा डेकोरेशन पीस जो क्रिस्टल का बना हुआ है वो बड़ा खूबसूरत होता है। अल्लाह ने जीनत और हिप्स को इकट्ठा डाल दिया, बता क्या दिया कि आसमान को जितना खूबसूरत और दिल आवेज बनाया उतना ही मजबूत और मुस्तहकम भी बनाया। ये पूरा कल्चर होता है, याद रखिए हमारे पास इस वक्त सोसाइटी में दो कल्चर है, एक है जीनत का और एक है हिफ्जन का। कुछ लोग सिर्फ खूबसूरती, ग्लैमर, बॉडी, उन्होंने हर सोई हुई हिस्स को जगा दिया लोगों की, कंवारी बच्चियों की हिस्स को ऐसे जगा दिया कि अब उनको जब शादियां नहीं मिलती तो वो फिर अपने जज्बात का नजायज इजहार करती हैं, इतना प्रमोट किया। अब देखिए कि आज से 25-30 साल पहले कंवारी बच्चियों को खूबसूरत भड़कीले चमकीले कपड़े नहीं पहनाते थे, वो जज्बे दबे रहते थे, जरूरत ही नहीं पड़ती थी, शादी पे रोते हुए जाती थी। आज जिस लड़की को आप ईद पे घाघरा चोली और क्या क्या मेहंदी बड़ी साड़ियां पहना देंगे, जेवर पहनेगी, जिसम उसको उभरेगा, क्या ख्याल है उसको नहीं पता चलेगा मेरा क्या दिल चाहता है। ये कल्चर है, आज आप देखेंगे आगे भी इंशाल्लाह आयत आती है तो आप देखेंगे कि एक जुमले से एक पूरा कल्चर दिखता है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ सितारों की खूबसूरती, यानी ज़य्यन्नस समा दुनिया भी मसाबी सूरत मुल्क में आता है, और हिफ्ज़न सूरत हिजर में हम पढ़ चुके हैं कि सितारों से शैतानों को मरवाने का काम किया जाता है। फिर उसके बाद का ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये है गालिब सब कुछ जानने वाले, गालिब अल्लाह इल्म वाले की कारसाजियां, ये है उसकी तकदीर, ये है उसका सिस्टम, ये है उसका नक्शा। हर छोटी बड़ी चीज अपने मौके पे हर वो काम कर रही है जो उसको करना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं, सिर्फ चंद आयतें मैंने पढ़ाई हैं और मेरा दिल फट रहा है अंदर से। मेरा दिल चाह रहा है कि इस वक्त अगर वक्त होता ना तो आपको वही फिर डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं जो हुबल या हबल के जरिए से कायनात की तस्वीरें खींची हुई हैं। जरूर देखिएगा अगर मौका मिले घर जाके। कोई डॉक्यूमेंट्री आप BBC.com पे खुजाएं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। उसमें एक है द अर्थ के नाम पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सेव्ड है, बच्चियों को भी दिखाइए कभी कभी उसका कोई क्लिप, एक एक क्लिप उसका आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल कैफ उठता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इतने अजीम रब, इतने बड़े रब की बात, इतने बड़े का पैगंबर आए और लोग मुंह ना खोलें, लोग उसकी तरफ देखे ना, कफ़ैना रदू, फिर भी रूगरदानियां करते हैं, फिर भी अहमियत नहीं देते। तो फकुल, तो कह दीजिए, अंजरतुकुम, मैं तुमको डराता हूँ। लफ्ज़ अंजरतु को देख लीजिए, नुजुर नजीर, बहुत दफा पीछे सुना, इतना छोटा सा लफ्ज है ना, अंजरतु, ये नुजुर, मैंने डराया। हालांकि जब नजरा के मादे के ऊपर हम गौर करें ना तो इसमें दो खसूसियात होती हैं। नंबर एक, वो डराना बर वक्त हो, यहाँ से फिर अगर तरबियती सेशन हो तो एक बहुत खूबसूरत नुकता निकलता है। तो नजीर वो होता है जो बर वक्त डराता है, ये नहीं कि बोल बोल के बच्चों को ढीठ कर दिया, ये नहीं कि टोक टोक के शोहर को ऐसा कर दिया कि वह बात ही नहीं सुनने को चाहता। अल्लाह के नबी कैसे नजीर थे, पर मौका बात करते थे, कभी अपनी खामोशी से डराते थे, कभी अपनी बातों से डराते थे, कभी नाराजगियों से डराते थे, कभी प्यार से डराते थे, कभी हाथ थाम के डराते थे, कभी कंधों पे हाथ रख के डराते थे, कभी किसी से कोई तोहफा लेके उसको डराते थे, कभी ना लेके डराते थे, बर मौका। इतनी बड़ी खूबी है, जैसे कहते हैं ना, वक्त वेले दी नमाज ते कवेले दिया टकरे, नमाज वक्त पे पढ़ेंगे तो नमाज है, बगैर वक्त के पढ़ेंगे तो वो और ही आपके ऊपर एक हुज्जत बनेगी। तो पहली चीज नजीर में होती है बर वक्त डराने वाला, ये नहीं कि आसमान से पत्थर बरसने शुरू हो जाएं, खतरे का अलार्म फिर बजे, पहले से बताया जाता है लोगों होश करो बंद टूटने वाले हैं, लोगों होश करो जलजले आने वाले हैं। और दूसरी चीज होती है अंजार से, सिर्फ अजाब की खबर देना नहीं होता बल्कि असल मकसद उस शख्स की खैर ख्वाही होता है कि अपने बचाव का इंतजाम कर ले। लिसानुल अरब एक डिक्शनरी है, इसमें आता है कि अंजरतुल कौम सैर अल अदु इलैहिम, मैंने कौम को दुश्मन के हमले से खबरदार कर दिया, बस उन्होंने अपना बचाव कर लिया। किस चीज से यहाँ डराने की बात है, साइकतन, साइका से, साइका क्या है, स्वात ऐन काफ, बादल की उस शदीद कड़क को कहते हैं जिसके साथ बिजली भी गिरे। मुझे नहीं समझ आता लोग ये नाम क्यों रखते हैं, हमारे यहाँ बड़ा मारूफ नाम है, और शायद आज से 25-30 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में भी ये बड़ा मारूफ था, आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बिजली जो गिर कर भस्म कर दे, पहले बारे में हम पढ़ चुके। या चलून असाबियहुम फी आजानिहिम सवाइक, वहां तक तो वो सवाइक सायकत उनकी जमा होती है। तो इसका मानी क्या है कि हर मोहलक अजाब, चाहे वो किसी भी नौयत का हो, काफिर मैं तुमको डराता हूँ उस सायका से, मिसल सायकत आदम व समूद, आद और समूद की कड़क की मानित। ये जुमले थे कि जब उतबा ने अल्लाह के नबी के मुंह पे हाथ रख दिए, ए मोहम्मद खामोश हो जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने खानदान की बर्बादी की बात ना करो, क्यों, उसको पता था कि इस जुबान जो सच्ची जुबान है इससे जब कोई बात निकल आती है तो उसके बाद फिर अल्लाह की पकड़ जरूर आती है। झुटलाने वालों को पता था कि अल्लाह के नबी की बात सच है, दुख और तकलीफ की बात है कि आज अल्लाह के नबी के मानने वालों को इसका यकीन नहीं रहा, आज हमें नहीं यकीन रहा कि अगर उन्होंने कहा अल्लाह के कलाम ही से ये पढ़ के कि हम जमीन के वारिस ईमान वालों को करेंगे, सूरत नूर में आप लोग पढ़ चुके हैं जिसका मफहूम है कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने ईमान वालों से वादा किया कि उनको जमीन पे गालिब करेगा, और यही बात अल्लाह के नबी की जुबान से निकली थी जब आपने शुरू शुरू में अपने साथियों को दावत दी और कहा लोगो लोगो अल्लाह को एक मानो तो फलाह पा जाओगे। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमों के लोगों को नहीं पता, दुश्मन तो आपकी बात को मान के अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे और अपना ही उन बातों को लेकर झूठी लोरियों की सूरत में सुने, ये चीज़ इंसान के लिए इंतहाई खतरे का अलार्म है। अल्लाह से दुआ करें कि जितना अल्लाह के नबी की बात का यकीन कल के काफिरों को था, आज के मुसलमानों को उतना ही हो जाए। और वही हुआ जिसकी खबर दी गई, इस जात हुमुर रुसुल मिन बैनी अईदीहिम। कुछ याद है कि जब आए थे उनके पास रसूल उनके सामने से, व मिन खल्फिहिम और उनके पीछे से, मुराद के हर तरफ से ये समझाने के लिए आए। और रसूलों की दावत क्या थी? देखिएगा रसूल किससे जोड़ रहे हैं, खुद से। पहले आके रसूलों ने कोई अपना स्लोगन पेश किया, कोई अपना नाम दिया? नहीं, एक ही दावत। हर दौर में बंदा है हक की जुबान से एक ही दावत निकलती है कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, ना इबादत करो अल्लाह के सिवा किसी और की, सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत ना करो। ये था वो पैगाम जो नबियों ने दिया। अब मिन बेनी अईदीहिम से क्या मुराद है? गुजरी हुई कौमें जो इन पर गुजर चुकी। और मिन खल्फिहिम में मुस्तकबिल में इस हठ धर्मी की खबर दी गई है कि जो इनको अब आगे जाके इसकी सजा मिलने वाली है। यानी आप हमारी जुबान में कहते हैं ना कि अगले पिछलों, तो बस ये अगले पिछले ही है कि अगले और पिछले लोगों के साथ यही मामला हो गया कि उन्होंने रसूलों की बात ना मानी, इसके बावजूद रसूल जो थे वो ये बातें करते ही रहे और उनको बताते रहे। जवाब में लोगों ने क्या कहा? कालू, उन्होंने कहा, लौशा रब्बुना, अगर रब चाहता। देखे कह अपने ही रब रहे हैं, इसका मतलब कि तौहीद रबूबियत को जानते थे और मानते थे। तौहीद रबूबियत कभी मसला नहीं हुई, मसला होती है रिसालत। हर दौर के लोगों का बहुत बड़ा मसला रसूल होता है। रसूल को निकाल दो तो बहुत सारी बातें जो थी वो मनमानी हो जाती हैं। तो ऐसे मनमाने लोगों ने जब देखा कि बात तो दिल लगती है, बात तो वो है कि जिसको सुनकर वाकई बंदे के छक्के छुट जाए, तो कहने लगे नहीं 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 लَأَنزَلَ مَلَائِكَةً, अलबत्ता वो नाजिल कर देता कोई फरिश्ते, कोई इंसान हमें क्यों समझाने आ गया, कोई फरिश्ते आते। हाँ फ़इन्ना बिमा उर्सिलतुम बिही काफिरून, बस हम तो उसको जो तुम्हें भेजा गया हमारी तरफ देकर उसका सरासर इनकार करते हैं। आप जरा टोन पे गौर कीजिए, कितनी रौनक भरी टोन है। पहली बात तो देखे कि इन्होंने अल्लाह ताला पर एतराज़ किया कि नौज़ु बिल्लाह, थुम्मा नौज़ु बिल्लाह, अल्लाह को खबर ही कोई नहीं कि किसको बुलाना चाहिए, किसको चुनना चाहिए पैगाम देने के लिए, किसको नहीं। आज भी लोग कहते हैं फलाह ना फलाह होता तो हम उससे ज़रूर पढ़ते, इसकी जगह फलाह होगा ना हम ज़रूर पढ़ेंगे, उस मसलक का ना होता ना हम उस मसलक से पढ़ लेते हैं। गोया के पता ही नहीं है उनको कि अल्लाह ने किसको चुना। दूसरी चीज़ आप देखिए कि तौहीन रिसालत, अल्लाह के नबियों को इंसान समझना, उनके ख्याल में नबी की कमी होती थी। एक वाक्य भी इस पे आता है, हजरत जाबिर से रिवायत है, एक रोज अबू जहल और कुछ सरदार बैठे थे कुरैश के, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में गुफ्तगू छिड़ी। देखिए जो लोग आते भी नहीं है ना गुफ्तगू में जरूर करते हैं, ये मौजूद सुखन तो ये बातें होती ही हैं। कहने लगे इस शख्स की हकीकत अभी तक हम पर नहीं खुली। सोचिए जरा कैसी उल्टी खोपड़ियाँ थी, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे 24वें पारे पे पहुंच के आप में से कोई बैठ के अभी तक समझ नहीं आया कि उस्ताजा है भी सही के नहीं, ये सही पढ़ा भी रही है कि नहीं, इनके मोटिव से चाहिए। हो सकता है किसी के जहन में आए, तो फिर ये बिल्कुल वही जुमला याद रखिए, शैतान कभी मायूस नहीं होता। उसने लोगों को बिस्तरे मर्ग पे भी जाते जाते इस्लाम कबूल करने से रोक दिया। कहने लगे समझ नहीं आती ये है क्या, पता नहीं इनकी हकीकत क्या है। अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो सहर और कहानत के फन में माहिर होने के साथ बेहतरीन शायर भी हो, तो इसे हम इसके पास भेजें। सोचिए टेस्ट ले रहे हैं आपके इल्म का, कहते कोई ऐसा मिल जाए ना जरा उसको इसके पास भेजते हैं ताकि उनसे गुफ्तगू के बाद वो हमें बताए कि ये शायर है, जादूगर है या काहिन है। उत्बा बिन रबिया बोला, मुझसे ज्यादा माहिर कौन होगा इस बात का। चुनाचे तय पाया कि उत्बा जाए और इनसे गुफ्तगू करे। फिर वही हुआ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उत्बा बिन रबिया गया और इधर उधर की बातें करने के बाद कहने लगा, आप खामखा हमारे अबाउजदाद को गुमराह कहते हैं, हमारे माबूदों की बेहरमती करते हैं, अगर इस तहरीक का मकसद हुकूमत हासिल करना है, वही बातें जो पीछे हो गई कि अगर आप रुपया बटोरना चाहते हैं तो हम सारे मिलजुल के आपको सोने चांदी के ढेर लगा देते हैं जो आपकी कई पुश्तों के लिए काफ़ी होंगे, लेकिन हमारी बातों पर तनकीद करना छोड़ दें। उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए और कहा जो कहना था कह चुके, और आपने फिर यही आयत यहाँ तक पढ़ी जो कि सायका वाली आयत। दहाक फरमाते हैं इन लोगों पर अल्लाह ताला ने 3 साल तक बारिश बिल्कुल बंद कर दी थी। आदर समुद की जो कहानी है, तुंदो तेज हवाएं चलती रहीं, 8 रोज 7 रातें, ये भी कुरान में बात आगे हम पढ़ेंगे, मुसलसल हवा का शदीद तूफान रहा। और कहते हैं कि आखिर शवाल में एक बुध के रोज से शुरू होकर दूसरे बुध तक रहा, और जब किसी कौम पर अजाब आता है तो बुध के दिन ही आता है। बहरहाल की एक तफसीर है इसमें। जाबिर फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी कौम की भलाई चाहता है, सोचिए कोई भी बात सोचे ना, फौरन खुद पे ले आया करें, अच्छा अल्लाह अगर आज हमारी भलाई चाहे तो क्या करते हैं? फरमाया, अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं और ज्यादा तेज हवाओं को इनसे रोक लेते हैं, यानी हल्की हल्की धीमी धीमी हवाएं चलती हैं और बारिश होती हैं। जब किसी कौम को मुसीबत में मुब्तला करना होता है तो बारिश इनसे रोक ली जाती है और हवाएं तेज कर ली जाती हैं। अल्लाह ताला ने इसी की बात कर दी कि आगे आ रहा है कि उनके ऊपर जो अजाब आए थे, भला क्यों? आप देखिए, मैं कल बहुत सोच रही थी जब इन आयात की तैयारी कर रही थी कि जितनी भी कौमें हलाक हुई हैं, मसलन कौमे नूह से हम बात शुरू करते हैं, पानी से हलाक हुई ना, फिर आप देखिए कौमे समूद तेज हवाओं से हलाक हुई, कौमे आद पे आंधियां आई, जलजले आए, फिर इसी तरह आप जितनी कौमें उनके ऊपर कोई ना कोई आसमानी आफत आई ना, क्या आया? पानी से मारे गए, हवाओं से मारे गए, किसी पे सांप नहीं गिरे, बिच्छू नहीं गिरे, किसी पे आग के कोड़े नहीं बरसे, क्यों भला? आप सोचें, क्यों? शायद कोई चीज आपके जहन में। देखिए, हमारे यहाँ एक जुमला बोलते हैं कि तुम किस खेत की मुरली हो, तुम तो मेरे बाएं हाथ की मारो। अल्लाह कहते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं सांप बिच्छुओं को बुलाने के लिए जो वाकई अपनी फितरत के एतबार से नुकसानदेह हैं, तुम्हें उन चीजों से मार दूंगा जो फायदेमंद है। यानी ये अल्लाह की कुदरत का इजहार है। तुम तो मेरे बाएं हाथ की मारो, तुम तो एक थप्पड़ की मारो, यानी जो पानी पिए बगैर तुम जियो ना, वही पानी तुम्हारी हलाकत का सरिया बन जाए। और अल्लाह की पकड़ जब आती है तो याद रखिए, यहाँ लिख लें, उन्हीं रिसोर्सेज के जरिए से आती है जिस पे लोगों को मान होता है। कल उनको अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज पे मान था, इन्हीं पे हलाक हुए। आज लोग साइंस के नाम पे अपनी तरक्की के मारे में, आज की कौमें जो मर रही है वो अपनी तरक्की याफ्ता चीजों से मर रही है। ये छोटे से फोन जिनको हम अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपके बच्चों के अगवा का जरिया बन रहा है। खुद रिपोर्टें बना बना के वीडियोस बना के आपके घरों में दे रहे हैं कि खुदा के लिए इसको देखो, मत सेव करें इसमें अपने घरों की डायरेक्शन, मत सेव करें इसमें ये, क्यों? उन्होंने एक पूरा क्लिप रिपोर्ट में दिखाया कि मैं एक माँ बड़े प्यार से पोज बना बना के अपने बच्चे की तस्वीरें खींच रही है, और इसको फिर वहां डाल देंगे, उस नेट पे डाल देंगे, साथ घर का एड्रेस, जो किडनेप करने वाले ग्रुप है वो फौरन उधर जाते हैं, एक एक ट्रेस करते हैं, उनको पता चल जाता है माँ कहाँ है इस वक्त, बच्चा किधर है, और बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। लोग कहते हैं सेलफोन को सरहाने रख के ना सोएं, रात को किसी वक्त आग लग सकती है। आप इसके साथ जितनी रेज अपने कानों में लेते हैं वो आपका दिमाग ही ना खराब कर दें। जो चीज आपके दिमाग पे होती है अल्लाह उसी से मरता है। हजरत ईसा अलैहि सलाम के दौर में तिब का बड़ा रिवाज था, तो उनको सारे मौजजा तिब वाले दे दिए गए। तो आज के दौर में अगर कोई नबी आता, ये मैं बात कह रही हूँ अगर के साथ, पूरी बात समझिए, अगर काट देंगे तो मेरा अकीदा ही अब गलत साबित कर देंगे, अगर कोई नबी आता तो उसके पास साइंस के मुजजात होते, वो बड़ी बड़ी इन्वेंशन लाता, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर उसके साथ होते, वो यूं ऊपर जाता, आसमानों पे आता, इधर खड़े अमेरिका में 1 घंटे में पाकिस्तान से अमेरिका से होके आता। लोगों के दिमागों पे जो सहर छाया होता है ना, वही चीज पेश की जाती है। तो अल्लाह ने उन्हीं चीजों से मार दिया। कहा तो अम आदम, और रह गए वो आद, ये वही है जिसको हम कहते हैं ना, अरे वो आदि, जैसे हम किसी को बड़े उसकी रौनक को तोड़े ना, फअम्मा ओ वो जो, यानी वो जो कुछ भी ना थे, वो आत फस्तकबरू फिल अर्दी बगैर अल हक, बस तकबर किया उन्होंने जमीन पे ना हक, यानी हक था ही नहीं। देखिए, तकबर का तो हक किसी को भी नहीं है, क्योंकि अल मुतकब्बिर अल्लाह की जात है, लेकिन अल्लाह की जात के साथ कोई भी तकबर करे कोई खूबी तो हो उसमें। ये वो आत थे जिन्होंने बगैर किसी खूबी के, जिसको हम कहते हैं ना कि गुण है कोई नहीं अंदर, और बड़के बड़ी मारते हैं, जिस बंदे में थोड़ी बहुत सारी भी बात हो ना, वो कोई बड़क मारे ना तो बंदा सुन लेता है। अल्लाह माफ करे बंदा जिसमें खूबी नहीं बल्कि टेढ़ा ही है, वो बड़क मारे तो उसको लोग कहते हैं वो देखो वो भी बोला है। इस किस्म की बातें लोग करते हैं ना। यहाँ अल्लाह ने इतनी बड़ी कौम की बात को कहा कि फस्तकबरू फिल अर्दी बिगैरिल हक, ना हक, ऐसे ही छोटा मुंह बड़ी बात करके इसने बोला। क्या बोला? वकालू मन अशद मिन्ना कुव्वा, कौन है हमसे ज्यादा ताकत में, हम बड़े हैं, हम बड़ी जमात हैं, बेताज बादशाह हैं, हमारे हाथ में सारे कंट्रोल चलते हैं, कौन है हमसे बड़ा? अल्लाह कहते हैं इनको बताओ, अबलम यरो, क्या इन्होंने नहीं देखा, अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम, ये बताओ, और कोई भी नहीं बड़ा, लेकिन उसके बारे में क्या ख्याल है जिसने इनको पैदा किया? वो अल्लाह तुमसे बड़ा नहीं? ऐसे जैसे कोई बच्चा बड़ा मारे तो माँ कहती है चुप कर, मैं तुझसे बड़ी हूँ, बाप के मैं तुझसे बड़ा हूँ। देखिए उम्र में तो माँ बाप बड़े होते ही हैं, कोई बच्चा माँ बाप से तो बड़ा नहीं होता। ये खोखला नारा उनका, अल्लाह ताला कहते हैं हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, जरूरत दिख रही है आपको? हाँ, हम हैं अभी तुमसे बड़े। हम ऐसे दावे सुन के एकदम ठंडे हो जाते हैं, झाग की तरह। कालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कहने लगे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ताला कहते हैं क्या इन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत को नहीं देखा जिसने इनको पैदा किया? तो नहीं देखा तो बता दो कि हुवा अशद्दु मिन्हुम कुव्वा, वो है ज्यादा कुव्वत वाला, क्योंकि वो अलकवी है। वकानू भी आयातिना यजहदून, वो तो हमेशा हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। कैसे? फरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी अय्यामिन नहिसात, फिर हमने भेज दी इन पर सख्त ठंडी तुंद हवा मनहूस दिनों में। नहिसात का लफ्ज है ना, ये नहिसा से दो लफ्ज लिखिए। नंबर एक नजिस, नजिस है ना, इन्नल मुशरिकून नजिस, सूरह तौबा में पढ़ चुके। नजिस कहते हैं नापाक को, गंदा, प्लीत, डर्टी, फिल्थी। और नहस, बस जीम की बजाय हा कर ले उसको, तो नहस कहते हैं मनहूस को। अल्लाह ताला कहते हैं ये बड़े बोल बोलने वालों पे जो हमने हवाएं भेजी सरसरा, बहुत तुंदो तेज हवाएं। सरसरा का लफ्ज होता है ना, ये सख्त सर्दी को कहते हैं, सर सर। हवाएं भी चलती हैं ना, जब कभी सर्दियों की हवाएं सोची हो, हमारे यहाँ कहते हैं जी कोयटा की हवा चली है या मरी में हवाएं चली हैं, तो सरसर कहते हैं शदीदुल बर्द, सख्त ठंडी हवा, वो हवा जो शदीद शोर मचाए, कानों के पर्दे फाड़ दिए जिस हवा ने, वो भेजी। कब तक भेजी? आगे हमें एक आयत से पता चलता है कि 7 दिन और 8 रातें उनके साथ हुई। क्या हाल किया उस हवा ने उनका? लीनुज़ीक़हुम अज़ाब अल-ख़िज़्य फ़िल हयात दुनिया, ताकि हम उनको दुनिया की जिंदगी में जिल्लता में सजा दें। तो क्या दुनिया के अजाब ने उनके गुनाह को माफ कर दिया? नहीं, वल अज़ाबुल आखिरति अख़्ज़ा, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही रुसवा कुन है। वहुम ला युनसरून, और इनकी हरगिज़ मदद न की जाएगी। अब यहाँ देखिएगा आयत पूरी हुई है, थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। पहली बात देखें कि ये जो इनका जुमला था, अल्लाह की दी हुई नेमतों को इन्होंने मिस यूज किया और जुमला बोल दिया मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। ये एक जुमला ही नहीं, ये एक पूरा कल्चर है, सेल्फ प्रेजिंग कल्चर, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटिंग कल्चर, खुद की तारीफें खुद करना, हम बड़े, हमारी बड़ी बात, खुद को मुबारकबादें देना। आज भी आपको ये जुमला मिलेगा। देखिए कि अंदर गुण कुछ नहीं था, जुमला बड़ा बोला, इतना बुलंद दावा इतनी कमजोर बुनियाद पर। आप इमेजिनेशन में लाए कि कोई शख्स एक बहुत बड़ा महल या कैसल या बहुत बड़ा विला बनाए, बुनियाद कुछ ना हो, किसी दरिया के ऐसे किनारे पे जहां से अंदर खोखली हो चुकी हो जगह, और उसके ऊपर कोई महल बनाए, हाल क्या होगा? धड़ाम से गिरेगा ना। तो जो उस महल का अंजाम होना था वही अल्लाह ने उनके बोल का कर दिया। एक ही होता है कि कोई बड़ी ताकत होने का दावा करे और साथ ही साथ उसने बहुत इंसाफ कायम किया हो, बहुत खुशहाली हो, बहुत लोगों को हकूक दिए हो, अमन का पैगंबर हो सकता है। अभी बात बनती है कि भाई मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, देखो हमने इंसाफ दिया इंसानियत को, और ऐसा हुआ। हजरत उमर फारूक का दौर हकीकत में इंसाफ, खुशहाली, सोशल वेलफेयर का था। आज तक मुसलमानों के हुक्मरानों ने ये जुमला नहीं बोला कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, क्योंकि उनको ऊपर अलकवी की जात दिखती है। लेकिन ऐसे लोग जिनके घर टूटे, जिनके घरों में खुदकुशियां, जिनके मुल्कों में नफसियाती मरीज ज्यादा, जिनके घरों का खानदानी सिस्टम बिगड़ गया, खुद फितने और फसाद की आग फैलाने वाले, जहां से गुजरे जंग के शोले भड़का के आगे, और दावे हैं कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कोई बात बनती है? ये तो ऐसे जैसे जबरदस्ती दूसरों के मुंह बंद कर देने, बकअप, चुप रहो, खामोश रहो। आज के दौर में ऐसे ही हुआ, और लोगों ने बड़ी ताकतें होने का दावा किया, और जो बेचारे नॉर्मल लोग थे उन्होंने खुद को और भी छोटा समझा, उनके शहर में मुब्तला हुए। नतीजा हुआ कि उनके कानून मानने लगे, उनकी आइडियोलॉजी के दिलदादा हो गए। तो सोचिए जो झूठी बुनियाद पे बगैर हक ये कह दे मन शद्दु मिन्ना कुव्वा, उसकी बात इतनी माने लो, उसके निज़ाम, उसके आइडियोलॉजी, उनके मुल्कों, उनके गुण गाने में लोगों की जुबानें खुश्क हों, तो वो अल्लाह की ज़ात, जो सबसे बड़ी है, उसका क्या हाल होगा? और जो बंदा बहुत ज्यादा यानी बिग सिनेरियो में चीजें नहीं देखता ना, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं कुएं का मेंढक, वो अपनी छोटी सी चीज को बड़ा समझता है। लेकिन जो बंदा बड़े मैदान में आता है, जो बड़े बड़े पैनोरामास को देखता है, उसको हमेशा अपनी कोशिशें छोटी लगती हैं। ये दोनों तरफ फिट कर ले, मतकबिर खुद को एक बड़ी कुर्सी समझ रहा है क्योंकि एक छोटे से जहन के सांचे में रख के बैठा हुआ है। जब इस कायनात की वसअतों इसके मालिक की रोशनी में देखेगा तो उसको समझ आएगा मैं कितना छोटा हूँ। इसके बरक्स मोमिन अपने नेक अमाल को हमेशा एक बड़े रूम के अंदर रखी हुई कुर्सी की तरह छोटा ही देखता है, फख्र नहीं करता, ना उसके दिल में ऐसी कोई बात आती है रौनक की कि उसको लगे कि बस अब मेरे बगैर तो कोई काम नहीं चलना और बस जो है वो मैं ही कर सकता हूँ और मैं यहाँ से जरा उठ के तो दिखाऊं, लग इनको पता जाएगा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। याद रखिए जब दिमागों में ये हवा भरती है ना तो अल्लाह ताला फिर उसका इंतकाम भी लेता है। हमेशा आजजी, हमेशा ये फिक्र करें कि अल्लाह ताला हमें किसी ऐसी पकड़ में ना ले ले जैसे उसने कौम आद और कौम समूद की थी। तो ऐसी बातें करने वाले आज ना रहे तो आज ऐसी बातें करने वालों का अंजाम क्या होगा? अल्लाह ताला कहते हैं जब उनको हवाओं से मारा तो आज क्या मुश्किल है। आपने पिछले 2-3 सालों में देखा होगा हर साल में कोई एक डिजास्टर ऐसा आता है, पूरी दुनिया मफलूज होती है। और आप गौर करके देखें, शायद आप उस तरह सोचते हैं कि नहीं, हर साल एक ऐसे मुल्क पे कोई आफत आती है जिसका सहर छाया हुआ है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि वो अल्लाह का जात हम कोई जजमेंटल नहीं। फिर यहाँ एक छोटी सी बात है, यामे नहसात, इससे क्या पता है क्या वो मनहूस दिन थे? देखिए इस्लाम क्या कहता है कि कोई दिन या रात मनहूस नहीं होता अपनी जात के नाते से। ये क्यों मनहूस हुए? उस कौम के बुरे आमाल की वजह से, क्योंकि हम सूरत बनी इसराइल में पढ़ चुके हैं कि वह कुल्ल इंसान नौजमनाहू तायरहू फी उनुकी वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामा। तो तायर वहां मनहूस के मानों में आया हुआ है। तो क्या पता चला कि दिन रात घर बीवी बच्चा कोई मनहूस नहीं होता। ये भी हमारे कल्चर में हिंदू कल्चर से आ गया, काली बिल्ली गुजर गई तो मनहूस है, ये घर जब से लिया है मसला हो गया, ये गाड़ी जब से ली है मनहूस है। कुछ मनहूस नहीं होता, लोगों के आमाल मनहूस होते हैं जिसकी वजह से जाता है। फिर आप देखिए कि एक ही दिन है, अगर वो कौमों के हक में जो उन्होंने नबियों को झुटलाया मनहूस होता है अगर, तो ईमान वालों के लिए वो निजात का दिन भी तो होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मनहूस है? जैसे फिरौन डूबा, चलिए फिरौनियों और किप्तियों के लिए तो वो मनहूस दिन था, तो हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए तो वो अच्छा दिन था। तो लिहाजा ये अकीदा अपना दुरुस्त रखिएगा कि कोई कपड़ा कोई घर कुछ भी मनहूस नहीं होता। बाज ने मनहूस का लफ्ज जो है वो भी इसलिए लिया कि चूंकि इसमें बहुत ज्यादा अननेचुरल किस्म का माहौल हो गया तो थोड़ा सा उनको डिस्टर्बेंस सा फील हुआ।